परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मलाकी नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है रूढ़िवाद को फटकार। तो आइए श्रोता, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की अंतिम पुस्तक मलाकी से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को अवसर देता है कि वे अपने मनों को फिराकर परमेश्वर की ओर लौट आएं। परमेश्वर इसराइलियों पर दोष लगाता है और वे उसका जवाब भी देते हैं। बंधुआई से स्वदेश लौटने वाले इसराइलियों ने परमेश्वर को 8 शिकायतें दी थी। जब जब परमेश्वर ने उनसे शिकायत की तब तब अपने आप को निर्दोष मानकर उन्होंने पलटकर परमेश्वर ही से प्रश्न पूछने का दुस्साहस किया कि किस बात में परमेश्वर उनसे अप्रसन्न है और क्यों है। परमेश्वर को वे बलिदान चढ़ा रहे हैं, वे परमेश्वर के लिए भेंट भी ला रहे हैं। इसके साथ ही वे कहते थे कि हम तो विधिवत सब धार्मिक संस्कार भी निभा रहे हैं और परमेश्वर को हमसे शिकायत है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि परमेश्वर बुराई करने वालों से प्रसन्न रहता है। अब वे परमेश्वर की शिकायत के प्रतिवाद में 6 निंदा का प्रश्न पूछते हैं। अब परमेश्वर उनसे कुछ करने को कहता है। तो आइए हम पढ़ते हैं मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरे विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें। मेरे प्रियो, देखिए वे कैसे चतुर लोग थे। वे परमेश्वर से कहते हैं, तू हमसे कहता है कि हम तेरे पास लौट आए, हम तो जानते ही नहीं कि हम तुझसे दूर हैं। हम तो मंदिर की हर एक आराधना में उपस्थित होते हैं, हम दशमांश देते हैं और अन्य सब धर्म के काम करते हैं, तो हम तो वास्तव में तेरे पास ही हैं। हम तुझसे दूर कब हुए थे। वे तो इतना दूर हो गए थे कि उन्हें अपनी वास्तविक दशा का बोध ही नहीं था। मेरे प्रियो, कलीसियाओं में भी हम देखते हैं कि रीति रिवाजों को प्राथमिकता दी जाती है जिसके पीछे सत्य छिप जाता है। सामर्थ के स्थान पर तड़क भड़क दिखाई देती है, आत्मिकता के स्थान पर सजावट दिखाई देती है। धार्मिक शब्दावलियां तो हैं परंतु परमेश्वर का सामर्थ नहीं है। वे स्वाद रहित नैतिकता से संतुष्ट हैं। यदि वे कुछ शब्दों का सही उच्चारण करें तो उनके विचार में सब कुछ ठीक है। परंतु परमेश्वर कहता है, तुम मुझसे दूर हो गए हो, लौट आओ, मेरी ओर फिरो। इसका क्या अर्थ है? मन फिराओ। उड़ाओ पुत्र, जिसके बारे में आप जानते हैं, घर लौटा था क्योंकि वह उसका घर था। इसी प्रकार विश्वासी प्रभु के पास लौट सकता है क्योंकि प्रभु उसका धाम है। अविश्वासी नहीं लौट सकते क्योंकि उसके तो घर ही नहीं है। उड़ाव पुत्र ने अपना मन फिराया था और यही मन फिराव है जो आज आपको भी जरूरी है। मेरे प्रियो, हमें मन फिराव का पूरा अर्थ तब तक समझ में नहीं आता है जब तक हम नए नियम में प्रवेश नहीं करते हैं। मन फिराव का मूल यूनानी शब्द है मेटानोइयो, अर्थात मानसिकता में परिवर्तन आना। इसका वास्तविक अर्थ है आपको चलते चलते यह बोध होता है कि आप गलत मार्ग पर हैं, तो आप तुरंत लौट जाते हैं और विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे, वह स्थान हमारे लिए परिचित नहीं था। हमने मार्ग में एक छोटी लड़की से रास्ता पूछा तो उसने कहा आप बाएं चले जाएं। कुछ दूर चलकर हम पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच गए। मैंने कहा उस लड़की ने हमें गलत मार्ग बताया है, अब हम क्या करते। हम लौटकर उसी मोड़ पर आ गए जहां से हम बाएं मुड़े थे और विपरीत दिशा में चल पड़े। आगे चलकर हमने देखा कि यही मार्ग सही है। मेरे लौटने का कारण क्या था? मैंने देखा कि मैं गलत मार्ग पर चल रहा हूं। मैं सही मार्ग पर चलना चाहता था। यही मन फिराव है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी प्रजा को मन फिराव के लिए कहता है। नए नियम में परमेश्वर विश्वासियों को मन फिराव के लिए कहता है। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर की संतान हैं। वह अपनी संतान से कहता है मन फिराओ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर सातों कलिसियाओं को संदेश देता है। उनमें से पांच कलिसियाओं से वह कहता है मन फिराओ, परंतु शहीद कलिसिया स्मुरना से उसने मन फिराने को नहीं कहा था, क्योंकि उसके लिए अपनी जान वे दे रहे थे। उसने फिलदेल्फिया की कलिसिया को भी मन फिराने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन पर अटल थी। अन्य पांचों कलिसियाओं को, लौदिकिया की कलिसिया को भी उसका संदेश यही था कि वे मन फिराएं। आज हम अविश्वासियों से कहते हैं कि वे मन फिराएं। वे किस बात से मन फिराएं? क्या उन्हें अपने मार्ग से लौट आना है? जी हां, परंतु मन फिराव का संदेश वास्तव में अविश्वासियों के लिए नहीं है। मेरा मानना तो यह है कि मन फिराव का संदेश हम विश्वासियों के सिर के ऊपर से अविश्वासियों को देते हैं, जो स्वाभाविक है कि अनसुना किया जाएगा। मन फिराव का संदेश वास्तव में आराधना में उपस्थित विश्वासियों को दिया जाना चाहिए। उन्हीं से हमें कहना है मन फिराव। अब कोई कहेगा आपके कहने का अर्थ क्या है? यह है कि मसीह को ग्रहण करने वाले अविश्वासी को मन फिराव की आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्रों, उसका मन फिराव एक ही शब्द में है, विश्वास। थिस्सलुनीकी की कलिसिया को दिए गए पौलुस के संदेश को सुने। वहां उसने बड़ी ही उत्तम से बात कही है, जो एक अच्छी सेवा भी वहां पर उसने दी है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 1:9 में लिखा है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। थिस्सलुनीकी शहर में पौलुस ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध प्रचार नहीं किया था, यद्यपि उसका प्रचार खलबली मचा रहा था। उसने मूर्तियों के विरोध कुछ भी नहीं कहा। उसने शराब पीने के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। उसने अपने प्रचार में ऐसी कोई भी बात नहीं की। यही कारण है कि मैं भी किसी प्रकार के पाप के विरुद्ध प्रचार नहीं करता, जब तक कि परमेश्वर का वचन उसके विषय में ना कहता हो। इस संसार में हमारा संदेश वही है और वही हो जो पौलुस ने फिलिपुस के बंदी गृह अधीक्षक के सामने कहा था। प्रेरितों के काम 16:31 में लिखा है, प्रभु यीशु में विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, विश्वास, विश्वास शब्द में आपका मन फिराव आ जाता है। क्या पौलुस ने थिस्सलुनीकी के नगर में मन फिराव का प्रचार किया था? नहीं, उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया था। उसने कहा तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। थिस्सलुनीकी के वासी अपने मार्ग पर चल रहे थे। पौलुस ने उनसे कहा, मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे पापों के लिए मर गया। और उन्होंने प्रभु यीशु में चित लगाया और वे मूर्तियों से विमुख हो गए। उनका यह परिवर्तन विश्वास में आता है। मेरे प्रियो, अपना मार्ग बदलने के लिए आपके पास दूसरा मार्ग भी होना चाहिए। आप किसी से यूं ही नहीं कह सकते मन फिराओ। जब मैं अपने बालकाले में वेदी के पास गया था, तब किसी ने मुझसे नहीं कहा था कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मेरे पास बैठा लड़का रो रहा था तो मैं भी रोने लगा। उसकी माता ने यह रोने का कार्यक्रम आरंभ किया था। मेरे दूसरी ओर बैठा व्यक्ति उछल कर कहने लगा कि प्रार्थना कर ली है। मैं नहीं जानता कि उसके कहने का अर्थ क्या था। जो भी रहा हो, परंतु मैंने प्रार्थना नहीं की थी, न ही मुझे किसी ने प्रभु यीशु के बारे में किसी ने कुछ समझाया था। मैं मन फिराव के लिए इसलिए तैयार हुआ था कि मैं संसार के सबसे अच्छे बच्चे के रूप में नहीं था, जबकि मेरी माता सोचती थी कि मैं बहुत अच्छा बालक हूं। मैं अपने पापों के लिए रो तो सकता था, परंतु मुझे प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता थी। जब आप प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, तब आप इन सब बातों से मन फिराते हैं। तथापि अनेक परमेश्वर की संतानों में से बहुत जन दूर देश चले जाते हैं और परमेश्वर को उनसे कहना होता है, मन फिरा और घर लौट आ। अनेक विश्वासी हैं जिन्हें घर लौट आना है। जी हाँ, परमेश्वर सड़क पर चल रहे किसी अविश्वासी से नहीं कहता है घर लौट आ, वह आपसे कहता है घर लौट आ। आप मुक्त विचारक कलीसिया में क्या कर रहे हैं? आप व्यभिचार के जीवन में क्या कर रहे हैं? परमेश्वर कहता है कि घर लौट आ। यह संदेश विश्वासियों के लिए है। इसराइली उसकी संतान थे, इसलिए उसने उनसे कहा, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। घर लौटने पर उड़ाव पुत्र की ताड़ना नहीं की गई थी, उसकी ताड़ना तो परदेश में हो गई थी। यदि आप सोचते हैं कि उसका परदेश वास आनंददायक था, तो आपका सोचना गलत है। पाप में गिरने वाला प्रत्येक मसीही जन इस सत्य की गवाही देगा कि पाप में वह आनंद नहीं है जो वह सोचता था कि वहां उसे मिलेगा। हम इससे अधिकांश जन यह गवाही दे सकते हैं। अतः महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम सुअरों के बाड़े में से निकल आएं। जी हां मेरे मित्रों, सुअरों के बाड़े को प्रसन्न करने वाले प्राणियों की एक ही जाति है और वह है सुअर। पुत्रों का सुअर का बाड़ा अच्छा नहीं लगता, वे वहां से तुरंत बाहर निकलेंगे, क्योंकि वह स्थान सुअरों के लिए है, ना कि पुत्रों के लिए। मलाकी के युग में इसराइली स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि उन्हें परमेश्वर की ओर फिरना है और मन फिराना है। वे मन को समझा रहे थे कि वे परमेश्वर से दूर नहीं है। उनका तर्क था कि मंदिर में भीड़ लगी रहती है, आराधक व्यवस्था पालन कर रहे थे, तो फिर मन फिराने का अर्थ क्या है? उनका कहना था कि हम मन फिराएं और तेरे पास लौट आएं। हम तो यही हैं, हम कहीं नहीं गए हैं। परमेश्वर कहता है, तुम मुझसे दूर हो। तुम व्यवस्था के अनुसार अपनी आराधना तो करते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर है। आज हम भी ऐसा ही करते हैं। हम आराधनाओं में जाते हैं, धार्मिक शब्दावलियों का भरपूर उपयोग करते हैं। कब हमें हल्लेलुया कहना है, कब जय मसीह की कहना है, हम जानते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है मन फिराओ। यह एक अत्यधिक कठिन काम है, विशेष करके विश्वासियों के लिए। मैं नहीं जानता क्यों, जबकि संसार में किसी की भी अपेक्षा हमारे लिए मन फिराना बहुत आसान है। मैंने एक पास्टर के बारे में सुना कि उसने अपनी समिति से कहा कि उन्हें मन फिराने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके सदस्य हर बात में गलती निकालते थे, पास्टर की भी गलती निकालते थे। पास्टर की इस चेतावनी को सुनकर उन्होंने पास्टर का ऐसा अपमान किया कि उसका देहांत हो गया। उसे मन फिराव की चेतावनी देने का यह प्रतिफल मिला। इसराइल का कहना था, हम किस बात में फिरें? हम कैसे मन फिराएं? हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमें मन फिराव की आवश्यकता नहीं है। मन फिराव की आवश्यकता तो इन बाहरी मनुष्यों को है। आज हमारी भी यही दशा है। जी हाँ मेरे मित्रों, हम दूसरों के लिए सोचते हैं कि मन फिराव की आवश्यकता उन्हें है, हमें नहीं। परंतु सच तो यह है कि हमें मन फिराव की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। जब हमारी प्रतिक्रिया ऐसी हो तो फिर परमेश्वर हमारे घाव उभारने पर विवश हो जाता है। अब आप मेरी बात सुनकर रेडियो बंद करना चाहेंगे, क्योंकि मेरी बात चुभेगी। मेरे विचार में मलाकी की पुस्तक मन भावन नहीं है, क्योंकि वह मुझसे, आपसे और सबसे बात करता है, और हमारे लिए ऐसे वचन आवश्यक हैं। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि जब वह कैंसर से जूझ रहा था तो डॉक्टर जो उसके कैंसर का उपचार कर रहा था वह बहुत ही अच्छा डॉक्टर था, परंतु उसने उसके साथ अन्य किसी भी डॉक्टर की तुलना में अत्यधिक कठोर व्यवहार किया। उसने उससे आशा नहीं की थी कि वह उसके साथ कभी ऐसा भी करेगा। कभी कभी वह मन को शांति पहुंचाने वाली बातें कहे, परंतु उसने कभी ऐसा नहीं किया। मित्र ने कहा कि मैंने उससे दर्द निवारक औषधि भी मांगी, परंतु उसने नहीं दी। वह सीधी और स्पष्ट बात कहता था, मैं इसी कारण उससे प्रेम करता हूं कि वह साफ साफ कहता है। क्योंकि जब आपके शरीर में कैंसर है तो आपको सच जानना अत्यधिक आवश्यक है। इसी प्रकार आत्मिक बातों में जो मेरी अनंत आत्मा से संबंधित है, तो मैं चाहता हूं कि कोई मुझे सच बताए, चाहे वह मुझे दुख पहुंचाए। परमेश्वर आपको सच बताने में संकोच नहीं करता है। जो कुछ वह कह रहा है आपके प्रति, वह सच है। अब आती है उनकी सातवीं प्रतिक्रिया। परमेश्वर ने उनसे 8 शिकायतें की और उन्होंने परमेश्वर को पलटकर उत्तर दिया। वे चिड़चिड़े बच्चों के समान 8 बार उसकी शिकायतों को निरर्थक बताते हैं। 8 बार वे अज्ञानी बनकर सत्य को टालते हैं। 8 बार वे धार्मिकता का स्वांग रचकर अपना दोष स्वीकार करने से बचते हैं। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। सुनिए, परमेश्वर हम दान देने वालों से क्या कहता है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? परमेश्वर कहता है, दशमांश और उठाने की भेंटों में। मेरे प्रियो, यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर साहूकार है तो इनका खून पीना चाहता है, तो आप गलत सोचते हैं। परमेश्वर तो कहता है, मैं तुम्हें आशीषें दूंगा, तुम उसमें से 9 भाग रख लो और मुझे बस 1 भाग दो। हम यहां अपनी समझ में कुछ महत्वपूर्ण सुधार करते हैं। धर्मशास्त्र का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर आप देखेंगे कि उन्हें 1 ही दशमांश नहीं देना था। डॉक्टर फेनबर्ग इसराइल द्वारा दिए गए दशमांशों की सूची देते हैं। व्यवस्था विवरण के पुस्तक 18 अध्याय के 4 पद में इसराइल की भेंट में अन्न, दाख और तेल का 60वां भाग देना होता था। उनके दशमांश भी अनेक थे। पहला फल चुनने के बाद शेष फलों का दशमांश उन्हें लेवियों के निर्वाह के लिए देना होता था। इसे हम लय व्यवस्था की पुस्तक 27 अध्याय उसके 30 से 33 पद में पाते हैं। दूसरा, लेवियों द्वारा याजकों को दशमांश का दान, इसे हम गिनती की पुस्तक 18 अध्याय उसके 26 से 28 पद में पाते हैं। और तीसरा, प्रजा द्वारा दूसरा दशमांश मिलाप वाले तंबू में सेवारत लेवियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के लिए देना होता था। इसे हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 12 अध्याय के 18 पद में पाते हैं। चौथा, प्रति तीसरे वर्ष गरीबों के लिए दिया जाने वाला दशमांश, इसे हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय उसके 28 और 29 पद में पाते हैं। मेरे प्रियो, मैं इस अति संदर्भ पर विशेष ध्यान देना चाहता हूँ। मेरे विचार में कलीसियाओं में गरीबों की सहायता पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है। परमेश्वर इसराइल से क्या कहता है? व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय उसके 28 और 29 पद में, तीन तीन वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकाल कर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना, तब लेविये जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश न होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। गरीबों के लिए यह व्यवस्था की गई थी, उन्हें हर तीसरे वर्ष अपनी उपज का दशमांश निकाल कर रखना होता था। अतः जब परमेश्वर दशमांश की बात करता है तो हमें समझना है कि वह इन सब दशमांश के बारे में भी कह रहा है। दूसरी बात है, हम जो अनुग्रह के युग में वास कर रहे हैं, हमारा दान इसराइल की व्यवस्था के आधार पर नहीं है। कलीसिया दशमांश देने की व्यवस्था के अधीन नहीं है, जबकि यदि कोई देना चाहे तो कलीसिया में दशमांश दे सकता है, जो उनके लिए प्रभु का मार्गदर्शन होगा। आरंभिक कलीसिया का उदाहरण देखिए। पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को पत्र लिखते समय मकिदुनिया की कलीसियाओं का उदाहरण दिया था, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसके 2 पद में, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। मेरे मित्रों, बहुत गरीब होने पर भी मकिदुनिया के विश्वासियों ने उदारता से दान दिया। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 8 अध्याय के 3 पद में लिखा है, उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपने सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। उनके मन में दशमांश का तो विचार ही नहीं था, उन्होंने प्रभु के प्रेम के कारण दशमांश से भी अधिक दिया। उनके दान देने का एक और कारण पौलुस हमें बताता है, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय के 4 पद में, इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। देखिए, दान देना सहभागिता और कलीसियाई आराधना की संगति है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 8 के 5 में लिखा है, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। यही कारण है कि मैं कहता रहता हूं कि यदि आप उद्धार प्राप्त नहीं है तो हमारी रेडियो सेवा में दान न दें, क्योंकि सबसे पहले तो आपका दान आपके लिए आशीष का कारण नहीं होगा और आगे चलकर हमारे लिए भी आशीष का कारण नहीं होगा। परमेश्वर अपनी संतान को ही देने के लिए कहता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि वाचा का संदूक केवल याचकों के कंधों पर उठाया जाता था? क्यों? वह बाहर से मजदूर बुला सकता था, उसके लिए एक बैलगाड़ी बनवा सकता था, परंतु वाचा का संदूक प्रभु यीशु का प्रतीक था, इसलिए कंधों पर उठाया जाता था, याचकों के कंधों पर। यदि हम उसके मुक्ति के कामों की चर्चा करें जो उसने हमारे लिए किए, तो वह काम याचकों के कंधों पर अर्थात उसके अपने लोगों के कंधों पर होना चाहिए। यदि आप विश्वासी नहीं हैं, तो वह आपसे दान देने के लिए नहीं कह रहा है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 8 अध्याय के 8 पद में कहता है, मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। मेरे प्रियो, वह आपसे देने के लिए नहीं कहता है, परंतु आपका दान मसीह यीशु के प्रति आपके प्रेम को प्रकट करता है। हमारा एक गीत है, जान मैंने अपनी दी क्या देता तू मुझे। यह गीत बाइबल आधारित नहीं है, वह कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछता है। वह कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8:9 में पौलुस कहता है, तुम हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि आपको सहर्ष दिल खोलकर प्रभु को दान देना चाहिए। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि जब वह इसराइल में था, तब उसे अनेक नवनिर्मित सरकारी इमारतें दिखाई गई, जिनमें से एक कर विभाग की थी। उसके गाइड ने व्यंग करते हुए कहा, हम इसे नई विलाप दीवार कहते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि कलीसिया में भेंट की थैली घुमाना भी विलाप की दीवार है। लोग सोचते हैं, ओह, अब पैसा डालना पड़ेगा। यदि आप सहर्ष दान ना दे पाए तो ना दे, क्योंकि इससे आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। मैं आपको निश्चित बात कहता हूं, क्योंकि यह सत्य है, आप यदि मन से नहीं दे रहे हैं तो आप आशीष प्राप्त नहीं करेंगे। मेरे मित्रों, यहां पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार इसराइली परमेश्वर को जवाब दे रहे हैं, और आज हमारा भी ऐसा ही जवाब होता है। परंतु परमेश्वर हमें अवसर देता है कि हम मन फिराएं, अपने दशमांश को परमेश्वर के भवन में लाएं, अधिक से अधिक हर्ष के साथ में दान दें, और यही विश्वासियों के जीवन में होना है। क्या आप ऐसा दान देते हैं, या आप भी परमेश्वर से प्रश्न करते हैं? आप इस पर अवश्य विचार करें। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आत्मिक लाभ उठाया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।